मुक्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचै हरे कृष्ण। पिछले कई रविवारों से हम भक्ति इस विषय की चर्चा करते आए हैं। पिछली बार हमने ये देखा कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। भक्ति कोई बाहरी दिखावा नहीं है, भक्ति हमारे हृदय की भावना है। और जब हम अनुकूल भावना से, प्रेम भावना से हम भगवान की सेवा करते हैं तो उसे भक्ति कहते हैं। पिछले रविवार को हम ये देख रहे थे कि अगर केवल कोई व्यक्ति भगवान का 24 घंटे स्मरण कर रहा है परंतु भक्ति भाव से नहीं कर रहा है तो फिर वो भक्ति नहीं कहलाता। इसके लिए उदाहरण कोई आपको याद है? कंस। और कोई जो उदाहरण आपको आपके श्रवण और वाचन से पता है आप बता सकते हैं? और कौन ऐसे थे जो प्रतिकूल भावना से, द्वेष से भगवान का हमेशा स्मरण करते थे? रावण। रावण हमेशा श्री राम के बारे में द्वेष करते थे और सोचते रहते थे 24 घंटे, खास करके जब श्री राम लंका की ओर बढ़े तो फिर रावण तो 24 घंटे श्री राम का स्मरण करते। लेकिन रावण का स्मरण ये भक्ति नहीं कहलाता है। उसी प्रकार से हिरण्यकश्यप 24 घंटे भगवान विष्णु का स्मरण करते लेकिन द्वेष की भावना से, घृणा की भावना से, भय की भावना से, इसलिए ये भक्ति नहीं कहलाता। तो भगवान के प्रति हमारे मन में जो भावना, उसे बढ़ाना, उसे अनुकूल बनाना, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे भक्ति भावना से भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। जितना ज्यादा हम स्मरण कर पाएंगे उतना हमारी भक्ति बढ़ेगी। लेकिन हम देख रहे थे कि गोपियां भगवान को भूलने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाती हैं क्योंकि उनके हृदय में पहले से ही प्रेम था। दूसरी बात, जो व्यक्ति हमेशा भगवान के बारे में बोलता रहता है वो शुद्ध भक्त कहलाता है। सही बात है ना? तो इसके लिए भी हमने उदाहरण दिया कि शिशुपाल भी कितना बोल रहा था भगवान कृष्ण के बारे में, लेकिन बुरे चीज बोल रहा था, इसलिए भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। और अपने कार्यों से भगवान को प्रसन्न करना, यह भी भक्ति की एक परिभाषा है। लेकिन चाणूर ने कुश्ती करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया, वीर रस का आस्वादन कराया भगवान श्री कृष्ण को। भगवान को बहुत अच्छा लगा युद्ध करते समय। और चाणूर का जो मुक्का प्रहार है वो भगवान कृष्ण को फूलों की माला की तरह प्रतीत हुए। तो क्या इसका मतलब है कि चाणूर ने भक्ति की? नहीं। दूसरी ओर माता यशोदा ने स्तनपान के समय कृष्ण को जल्दी से जमीन पर थमा दिया और सिगड़ी में उबलते हुए दूध को के पात्र को निकालने के लिए भाग गईं। भगवान बड़े नाराज हुए, दही का मटका तोड़ दिया, फोड़ दिया, बंदरों के बीच में बांटने लगे। भगवान क्रोधित हो गए, आग बबूले हो गए, आंख लाल लाल हो गए, होंठ कांपने लगे क्रोध से। लेकिन फिर भी, हालांकि माता यशोदा ने कृष्ण भगवान को इतना क्रोधित किया, फिर भी उनका कार्य भक्ति कहलाता है। लेकिन चाणूर जिन्होंने भगवान को प्रसन्न किया उनका कार्य भक्ति नहीं कहलाता है। इसलिए भक्ति ये विषय बड़ा टेढ़ा मेढ़ा विषय है, लेकिन वास्तव में देखा जाए मूल रूप में बहुत सरल है। जिसके हृदय में भक्ति भावना है वो चाहे भगवान को क्रोधित करे या प्रसन्न करे, वास्तव में वो भगवान को प्रसन्न करेगा ही। बाहरी रूप से भी अगर भगवान कभी क्रोधित क्यों न प्रतीत हुए हों, लेकिन फिर भी अंदर से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये नाटक किए, सब लीला किए। तो ऐसे हम देख रहे थे कि कैसे अनुकूल भावना से भगवान का स्मरण करना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान की सेवा करना, अपने मन से, वाचा से, अपने शरीर से, कार्यों से, ये उत्तम भक्ति कहलाता है। तो आज हम भक्ति की व्याख्या को आगे बढ़ाएंगे। वैसे भक्ति के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हमें प्रयत्न करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इस विषय के बारे में सुनने के लिए, बोलने के लिए, क्योंकि यही तो हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ये संसार में दुर्भाग्यवश लोगों को ये भक्ति रस का स्वाद नहीं मिल रहा है, वो केवल इस संसार के भोग में लगे हुए हैं। लेकिन ये भोग भी ज्यादा समय तक किसी भी प्राणी को, जीव को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसार के भौतिक शक्ति में वो क्षमता नहीं है कि वह हमें पूरा आनंद दे या लंबे समय तक हमें सुखी रखे, ये संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग ज्यादा भोग करके फिर उस भोग को त्याग करते हैं, फिर त्याग को स्वीकार करते हैं, लेकिन त्याग को स्वीकारने के बाद भी उब जाते हैं, बहुत त्याग हो गया, चलो भोग में वापस चलो। तो प्रभुपाद जी बताया करते थे कि लोग हफ्ते के 4-5 दिन अपने कारखाने में जाकर, दफ्तर में जाकर, दुकानों में जाकर बहुत परिश्रम करते हैं और भोग के लिए, और बाद में एक दिन दो दिन जब रविवार आ जाता है, शनिवार आ जाता है, तो उसे त्याग देते हैं और दूसरे किसी कार्य में जाते हैं। तो इस प्रकार से भोग और त्याग ये चलता रहता है। न कोई व्यक्ति भोग में टिक पाता है, न त्याग की परिस्थिति में टिक पाता है। आप में से कोई बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्यों कोई व्यक्ति न भोग में टिक पा रहा है न त्याग में? अगर आप बोलेंगे कि भोग वास्तव में हमें दुख देता है इसलिए वो आदमी टिक नहीं पाता, तो फिर त्याग में टिकना चाहिए, फिर त्याग में क्यों नहीं टिकता? तो आप में से कोई जवाब देंगे कि भोग में या त्याग में, दोनों में कोई व्यक्ति टिक नहीं पाता, इसका क्या कारण है? क्यों क्षणिक है? हाँ, लेकिन ये दो भोग और त्याग क्या है? ये हमारे असली स्वरूप नहीं है, ये हमारे लिए एक मिथ्या के उपाधियां हैं या कार्य हैं। हमारा स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है कृष्ण का दास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो कृष्ण का दास होकर भगवान की सेवा करना ये हमारी नित्य अवस्था है, शाश्वत उपाधि है। और जब इस उपाधि को त्याग कर, इस अवस्था को त्याग कर हम कोई भी किसी भी दूसरे अवस्था को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है, ये एक कृत्रिम अवस्था हो जाती है, आर्टिफिशियल चीज हो जाती है। इसलिए भोग ये तो एक कृत्रिम अवस्था है ही, और त्याग ये भी एक कृत्रिम अवस्था है, हमारा स्वाभाविक स्थान नहीं है। तो त्याग करते हैं तो जीव एक त्याग की अवस्था में नहीं रह सकता। जीव को चाहिए कि वो कुछ करे, कुछ कार्य करे, तो वो क्या है? वो है सेवा। लेकिन माया की सेवा करके तो केवल दुख मिलता है, लेकिन भगवान की सेवा करके हमें दिव्य आनंद मिलेगा। इसलिए यही हमारा सच्चा परिचय है। इसलिए हमें भोग और त्याग दोनों को त्यागना चाहिए। आपने वो बड़े बड़े घड़ियां देखी होंगी, घड़ी जिसमें वो छड़ी चलती है, कभी ऐसे ऐसे टिक टॉक वो घड़ी चलती है ना, तो उसी प्रकार में संसार के लोग भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग ऐसे ही करते रहते हैं। थोड़े समय भोग, फिर उब गए तो त्याग, फिर त्याग से उब गए भोग, यही चलता रहता है। इसलिए एक ठिकाने वो टिक नहीं पाते हैं, लेकिन भक्ति करने से हम टिक पाएंगे। टिक टॉक हमारा असली होगा, नहीं तो वहां टिक नहीं जाते, टॉक भी हो जाते हैं। तो भक्ति हम सबको करनी चाहिए। भक्ति करने से ही, क्योंकि यह हमारा स्वभाव है, हमें इसमें सच्चा आनंद मिलेगा। लेकिन इस समय हम बद्ध अवस्था में हैं, कई जन्मों से भगवान को भूल चुके हैं, और जब हम सत्संग में आते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारा मन तुरंत आकृष्ट होना चाहिए, तुरंत हमारे हृदय में भक्ति भावना जागृत होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता। हम बैठते हैं, प्रवचन चालू हो रहा है, लेकिन जब वहीं आते आकर के हम कृष्ण के बारे में बोलना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं, तो नींद आ जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, मन भटक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम बद्ध अवस्था में हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब करते करते वो असलियत में जो हमारी भक्ति की भावना है वो जागृत होगी, धीरे 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 से। फिर आगे चल के हमें ये प्रवचन, ये कीर्तन, ये अध्ययन, भगवान की सेवा, ये सब इतने अच्छे लगने लगेंगे कि जब कोई भौतिक विषय के बारे में बातचीत करेगा हमें नींद आएगी, हमारा मन भटक जाएगा। जो व्यक्ति टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कभी भी सोते हैं? मेरे ख्याल सोते नहीं। सिनेमा चल रहा होता है तो बहुत अच्छी तरह से बिना सोए हुए आंख खोल के देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन चीजों में रुचि है। तो भक्ति के विषयों में रुचि जागृत करना ये हमारे लिए आवश्यक है, और वो केवल भक्ति भक्तों के संग में हो सकता है। इसलिए भक्तों के संग में आना, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। ऐसा करेंगे तो भक्ति मार्ग में हम अच्छी तरह से प्रगति कर सकेंगे। तो उत्तम भक्ति के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में भगवान कपिल देव बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में। वो कहते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगति रवे छिन्न यथा गंगां भसंबुधौ लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरितम् अहैतुकी अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। वो कहते हैं, गंगा अंबुसौ अंबुधौ यथा, जिस प्रकार से गंगा जी का जल स्वाभाविक तौर से अंबुधौ अर्थात सागर की ओर बह जाता है, और उसमें कोई बीच में कोई अड़चन आए, कोई पहाड़ आए, कोई पत्थर आए, फिर भी अविच्छिन्ना बिना कोई रुकावट के ये जो है, या रुकावट होते हुए भी गंगा का जल सागर की ओर स्वाभाविक तौर से बढ़ते जाता है बड़े तेज प्रवाह से। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, जब मेरे बारे में सुनते हैं, मेरे गुणों का श्रवण करते हैं, मत गुण श्रुति मात्रेण, केवल मेरे गुणों का श्रवण करने मात्र से ही क्या होता है, उनका मन मनोगतिर अविच्छिन्न, उनका मन तुरंत मेरे चरण कमलों की ओर आकृष्ट हो जाता है, उनका मन मेरी ओर बह जाता है। अगर कहीं मन इधर उधर भटक भी गया हो, लेकिन कृष्ण का नाम सुनकर, कृष्ण के गुण सुनकर, कृष्ण के भक्तों के बारे में सुनकर, तुरंत उनका मन आकृष्ट हो जाता है भगवान के पास। भगवान कहते हैं यहां, मई सर्व गुहाशये, गुह मतलब हमारा हृदय, आशय मतलब निवास करने वाले। तो भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, बहुत करीब हैं, हमारे हृदय में विराजे हुए हैं। तो जब शुद्ध भक्त भगवान के बारे में सुनता है, तुरंत उसका मन भगवान की ओर दौड़ने लगता है। और कपिल देव आगे बताते हैं, लक्षणम भक्ति योगस्य, भक्ति योग के ये लक्षण होते हैं। भक्ति योग मतलब ये नहीं कि जब हम जैसे ही प्रवचन शुरू हुआ हम सो गए, नहीं, भक्ति योग मतलब जैसे ही कीर्तन भगवान का नाम सुना तब जाग गए, ये है भक्ति। तो इस प्रकार से कपिल देव वर्णन करते हैं, निर्गुणस्य ही उदाहरितम, ये जो भक्ति है ये भौतिक गुणों से परे है, अहेतु की अव्यवहिता, बिना हेतु के जो किए जाते हैं ये कार्य, इनको भक्ति कहते हैं। अव्यवहिता बिना कोई रुकावट के, या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। तो ये पुरुषोत्तम, ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति कहलाती है। अब जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी परीक्षा अगर करनी है तो केवल कृष्ण के बारे में बोलिए, फिर देखिए वो आकृष्ट होते हैं या नहीं। ये भक्ति में प्रगति हो या प्रगतिशील होने की एक परीक्षा है। अगर बाहर के लोगों को हम कृष्ण के बारे में बताएं तो सुनना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो भक्त नहीं है। लेकिन अगर किसी अच्छे भक्त को आप कृष्ण के बारे में बोलें सुनाएं तो तुरंत उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, कान सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। अच्छा, कुछ कृष्ण के बारे में बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बोलो बोलो बोलो। और इसी तरह से ज्यादा जो भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर है, ये आतुरता हमारे भक्ति का थर्मामीटर है। थर्मामीटर आप जानते हैं, जिससे हमारे बुखार को नापतोल किया जा सकता है। तो अगर भक्ति का नापतोल करना है तो भगवान के गुणों का या कथाओं का श्रवण करना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी हमें धोखा भी पड़ सकता है, हम पहचान नहीं सकते हैं अच्छे भक्तों को, क्योंकि बाहरी रूप से हमें लगता है कि भक्त वही है जो बाहरी रूप से भक्त की तरह दिखता हो। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। इतिहास में ऐसे कितने सारे भक्त हुए हैं बाहरी रूप से जो भक्त नजर नहीं आए लेकिन वास्तव में बड़े अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त थे। और ऐसे भी कई उदाहरण हैं जो भक्त का वेश पहनते हैं लेकिन वास्तव में भक्त है ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु के समय उनके एक शुद्ध भक्त थे जिनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि, और चैतन्य महाप्रभु उनको बहुत मानते थे। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत ही धनवान पुरुष थे, इतने धनवान थे कि लोग उनको गलत समझते थे, लेकिन जो वास्तव में उनको पहचानते थे वो जान सके कि ये तो बड़े शुद्ध भक्त हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त मुकुंद, इन्होंने सोचा, इन्होंने देखा कि गदाधर पंडित के मन में शायद कोई संदेह है पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, तो उन्होंने कहा कि चलो हम जाकर पुंडरीक विद्यानिधि का दर्शन करते हैं, वो तो बड़े शुद्ध भक्त हैं। तो गदाधर पंडित ने सोचा चलो ठीक है, अभी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐसे बड़े भक्त का दर्शन करने का मौका मिल रहा है तो जाते हैं। तो जब वहां गए तो गदाधर पंडित ने क्या देखा कि पुंडरीक विद्यानिधि का घर कैसा घर है, एक विशाल महल की तरह है, राजमहल की तरह है, और उस महल में नाना प्रकार के महंगे महंगे चीजों से, मूल्यवान चीजों से वो घर सुशोभित है, नाना प्रकार के हीरे मोती रत्न। और फिर वहां पर एक कमरे में कई बड़े बड़े कमरे थे, और एक कमरे में वहां पर पुंडरीक विद्यानिधि एक आसन पर विराजे हुए थे, मखमल रेशम तकिया बालिश, और फिर साथ साथ में पान, फिर पान थूकने के लिए स्वर्ण का पात्र, और फिर कोई सेवक उनकी सेवा कर रहे हैं, चामर हिला रहे हैं, कोई उनको आकर कोई अंगूर खिलाने दे रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहे हैं, और ये बड़े शान से बैठे हैं, पैर फैलाकर यूं तकिए के ऊपर हाथ रख के आराम कर रहे हैं, पान चबाते हुए बैठे हैं। तो गदाधर पंडित के मन में तुरंत ये विचार आया कि अरे ये तो मुकुंद यहां मुझे ले आए एक भगवान के शुद्ध भक्त से मुलाकात करने के लिए, अब ये कौन है, ऐसे व्यक्ति के पास में लाए मुझे। तो मुकुंद को तुरंत पता चला कि गदाधर पंडित के मन में क्या चल रहा है। तो मुकुंद वो बड़े अच्छा गीत गाते थे, बड़ा मधुर स्वर था उनका, और चैतन्य महाप्रभु हमेशा उनका कीर्तन भजन सुनना पसंद करते थे। तो तुरंत मुकुंद ने श्रीमद् भागवत का एक श्लोक का उच्चारण किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाययत अप्यसाधवी लेभे गतिम धात्र्युचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ये उद्धव का एक श्लोक है। जब उद्धव को याद दिलाया विदुर ने, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे, तब उस समय उद्धव को कृष्ण का स्मरण हुआ और वो कहने लगे कि मैं उस व्यक्ति का स्मरण कर रहा हूं श्री कृष्ण का, उनसे बड़ा दयालु व्यक्ति भला ये सारे संसार में कौन हो सकता है, क्योंकि पूतना जैसे राक्षसी जो कि कृष्ण को मारने के लिए आई थी, द्वेष भावना अपने हृदय में ग्रहण करके आई थी, झूठे झूठे मां का स्वरूप लेकर स्तनपान कराने आई थी, लेकिन अपने स्तनों पे जहरीला एक पदार्थ लगाकर आई थी, विष लगाकर आई थी, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मां का स्थान दिया, एक धात्री का स्थान दिया अपने धाम में, इनसे बड़ा भला कौन कृपालु हो सकता है। तो ये श्लोक जब पुंडरीक विद्यानिधि ने सुना तो तुरंत उनमें एक ऐसा परिवर्तन हो गया कि इस परिवर्तन को देखकर गदाधर पंडित चकाचौंध रह गए। क्या परिवर्तन हुआ? तुरंत जो भक्ति के अष्ट सात्विक विकार हैं, शरीर के परिवर्तन हैं, वो प्रकट होने लगे। कंठ गदगद हो गया, रोमांच हो गए, आंखों से अश्रु की प्रवाह होने लगी और न जाने वो क्या बोलने लगे, और इधर उधर उनका शरीर जो है थड़फड़ाने लगा और अपने कपड़ों को ही फाड़ने लगे, जो रेशम के जो आसन के ऊपर कपड़े थे उसे फाड़ने लगे, इधर उधर भटकने फटफटाने लगे अपने शरीर को। चार पांच दस सेवक आके उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन वश में नहीं कर पाए, आखिर में नीचे गिर पड़े, प्राय बेहोश हो गए और फिर थोड़ी देर के बाद शांत हो गए और उसी बेहोश अवस्था में काफी समय तक पड़े रहे। और फिर मुकुंद ने गदाधर पंडित की ओर देखा और गदाधर पंडित समझ गए कि ये तो वास्तव में भक्ति के लक्षण इन्होंने प्रकट किए थे। तो फिर वो समझ गए कि वास्तव में पुंडरीक विद्यानिधि कितने उन्नतशील भक्त हैं। और फिर उनके मन में एक अपराध जो हुआ था पुंडरीक विद्यानिधि के प्रति, तो उन्होंने सोचा कि इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मुझे क्षमा याचना करनी चाहिए उनसे और उनसे दीक्षा भी लेनी चाहिए। और फिर बाद में जाकर गदाधर पंडित ने पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा भी ले ली। तो इस छोटी सी कथा से हम क्या समझ सकते हैं? कई चीजें, लेकिन एक बात तो यह है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं केवल कृष्ण के गुणों का श्रवण करने मात्र से ही, जैसे यहां कपिलदेव बताते हैं, मत गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशये मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसौम्बुधौ, गंगा जैसे बहती है सागर की तरह वैसे उनका मन तुरंत कृष्ण के चरण कमलों की ओर बह जाता है। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। तो हमें भी ऐसे भक्तों के पदचिन्हों में चलने का प्रयास करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम जब राधा गोकुलानंद मंदिर में आए और प्रवचन चालू हुआ तो हम अपने थड़फड़ करने पैर इधर उधर फैलाने लगे, और फिर ऐसे नहीं, ये तो केवल शुद्ध भक्तों के लक्षण होते हैं जो स्वाभाविक तौर से प्रकट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें भगवान की कथा में ज्यादा रुचि लेने का प्रयास करना चाहिए। अगर नींद भी आ रही हो तो हमें अपने आप को जागृत अवस्था में रखने का प्रयत्न करना चाहिए। कई भक्त हैं जो अपने साथ में छोटे से पानी के बोतल रखते हैं, जल का, इतना सा छोटा सा, जैसे छोटी सी पिचकारी पानी की, और जब नींद आ जाती है तो तुरंत अपने आंखों पे वो पानी की पिचकारी डालते हैं ताकि वो सोए नहीं। या अपने पास में जो बैठे हुए भक्त हैं उनको कहते हैं हमें नींद आ गई तो हमें जगा देना। तो इस प्रकार से भक्त जो सिंसियर होते हैं किसी न किसी तरह से कृष्ण कथा का स्वाद लेने के लिए, हरि नाम का स्वाद लेने के लिए आतुर रहते हैं। और एक उदाहरण जो मन में आता है वो है उद्धव जी का। उद्धव जी वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे। भगवान की तरह ही दिखने में थे, वही वर्ण, वही सारे जो लक्षण उनके शरीर के। बड़े विद्वान भी थे उद्धव, बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं उनके शिष्य थे, और वैसे भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई भी थे। तो ऐसे हुआ कि विदुर जी जो कि पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे, जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया और उनको वहां हस्तिनापुर से बाहर निकाल दिया, तो बड़े दुखी होकर विदुर तीर्थ यात्रा में चले गए। काफी समय तक तीर्थ यात्रा उन्होंने की, और जब प्रभास क्षेत्र जो द्वारका के पास है वहां पर आ पहुंचे, तब उन्होंने वो खबर सुनी कि उनके सारे रिश्तेदार जो हैं अपने आप में लड़ाई करके युद्ध करके उनकी मृत्यु हो गई है। कुरुक्षेत्र में एक भीषण युद्ध वहां हुआ जिसमें कि करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए, और इतना ही नहीं, इस युद्ध के बाद भी द्वारका में यदुकुल के जो सदस्य हैं उनके आपस में भी झगड़े हुए, और आपस में एक दूसरे के उन्हें उन्मत्त अवस्था में मदिरापान करने के बाद में एक दूसरे के ऊपर प्रहार करके सब अपने आप को खत्म कर दिया, और कृष्ण भगवान भी अपने धाम लौटकर चले गए हैं। ये सारे खबरें जो हैं विदुर जी ने सुनी, बहुत उदास हो गए कि अरे अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा सारे पृथ्वी का। तो ऐसे भ्रमण करते करते और पश्चिम की ओर गए, सरस्वती नदी के तट पर गए, वहां से फिर और उत्तर और पूरब की ओर चलते गए, आखिर में पहुंचे यमुना जी के तट पर। वहां पर जब पहुंचे तो अचानक उनकी मुलाकात हुई उद्धव जी से। उद्धव वास्तव में बद्रिक आश्रम की ओर जा रहे थे, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने की योजना बना रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने यह व्यवस्था की कि सारे यदुकुल के सदस्य पहले वापस उनके चले जाएं, क्योंकि भगवान के जो पार्षद होते हैं भगवान उनको उनकी लीला में शामिल कराने के लिए ले आते हैं एक खास कोई उद्देश्य से, एक मिशन होता है, और जब वो कार्य संपन्न हो जाता है तो भगवान सोचते हैं कि ये सारे मेरे पार्षद जो अलग अलग धामों से आए हैं, कोई मेरे गोलोक धाम से आए हैं, कोई स्वर्ग लोक से आए हैं, कोई देवी देवताओं के लोकों से आए हैं, अब इनका कार्य तो हो गया पूरा, अब इनको लौट के जाना चाहिए। तो जो यदुकुल के लोग हैं वो इतने शक्तिशाली थे श्री कृष्ण के उपस्थिति की वजह से कि कृष्ण भगवान सोचने लगे कि इनको भला कौन मार सकता है, किसकी ये शक्ति है कि यदुकुल का नाश करे। अगर यदुकुल के सदस्यों को वापस अपने अपने धामों में लौट के जाना है और यदुकुल का संहार अगर होना है तो केवल यदुकुल के सदस्य ही कर सकते हैं, आपस में ही उनको झगड़ा करना है और झगड़ा करके एक दूसरे को मार के वो वापस जा सकते हैं। तो फिर भगवान की योजना से ऐसे भीषण झगड़े उनके बीच में हुए और फिर भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए, और उस समय उद्धव उनके पास में आए। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में हम देखते हैं कि ये जो अंतिम उपदेश, आखिरी उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस धरातल पे दिया वो उद्धव को दिया, और इस उपदेश को उद्धव गीत कहते हैं। जैसे अर्जुन को जो भगवान ने उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में उसको भगवत गीता कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 11वें या 11वें स्कंद में जो कृष्ण का उपदेश है उद्धव को, उसको उद्धव गीता कहते हैं। तो खैर, जब उद्धव ने यह उपदेश श्रवण किया, भगवान कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि मेरी इच्छा यह है कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ और वहां तपस्या करो, मेरा स्मरण करो, मेरी अर्चा पूजा करो, और इस प्रकार से जब तुम देह को त्यागोगे तब मेरे पास लौटकर आओगे। तो उद्धव बद्रिक आश्रम की ओर जा रहे थे, जाते जाते यमुना के तट पर पहुंचे, और ठीक उसी समय विदुर जी भी वहां पर आ पहुंचे। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों बड़े प्रसन्न हुए, आलिंगन किया, और उद्धव जी ने विदुर जी को प्रणाम किया, विदुर जी ने उद्धव को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उद्धव कम उम्र के थे, विदुर जी के पुत्र के समान थे, क्योंकि वैसे उद्धव जी कृष्ण के चचेरे भाई थे, कृष्ण के पिता थे वसुदेव, वसुदेव के एक बहन का नाम था कुंती, कुंती के पति थे पांडु और पांडु के भाई थे विदुर। तो ये लिंक आप समझ गए, इसका मतलब है कि उद्धव और विदुर में क्या संबंध था, प्राय पिता के बराबर। तो इसलिए उद्धव जी ने विदुर को प्रणाम किया और तुरंत विदुर जी बड़े खुश होकर कई प्रश्न करने लगे। हालांकि वो सब कुछ जानते थे, फिर भी श्रीपाद जीव गोस्वामी बताते हैं कि इस बात को सही तरह से पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाए। ये सारी खबरें उनके हृदय में अभी तक अच्छी तरह से बैठी नहीं थी। जैसे अगर कोई किसी का निकट का व्यक्ति उनकी अगर उनका देहांत हो जाता है तो कई दिनों तक वास्तव में उस व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि वास्तव में ये जो हुआ है, कई दिन लग जाते हैं। तो उसी प्रकार से विदुर सोच रहे थे, ये कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण भी चले गए, सारे यदुकुल के सदस्य चले गए और ये पांडव कौरव कोई भी नहीं रहे, केवल पांडव है वो अभी हस्तिनापुर में होंगे। तो इसलिए जानबूझकर विदुर ने उद्धव से प्रश्न किए कि अरे उद्धव, आप तो अभी द्वारका से आ रहे होंगे, तो द्वारका में हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? वही श्री कृष्ण जिनका के ब्रह्मा जी के निवेदन करने से अवतार हुआ यहां पर, वो तो ठीक है ना? और फिर बलराम जी जो हलयुद्ध में इतने प्रवीण हैं, वो बलराम जी कैसे हैं? और साथ साथ में रोहिणी देवी, वसुदेव, ये सब कैसे हैं? और वैसे यदुकुल के सभी लोग, सारे कुल में सब कुशल मंगल तो है ना? और सांब, अनिरुद्ध, चारुदेशन, ये सारे कैसे हैं? प्रद्युम्न इत्यादि, ये जो सब कृष्ण के पुत्र हैं। वैसे अनिरुद्ध ये वास्तव में भगवान नारायण के ही अवतार थे, कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण के ही अवतार स्वयं के पुत्र के रूप में आए। और फिर जो प्रद्युम्न हैं कृष्ण के पुत्र, वो वास्तव में कामदेव हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के लीला में न केवल उनके धाम से उनके भक्त आते हैं लीला में शामिल होने के लिए, परंतु स्वर्ग लोक से भी देवी देवता भी अवतार लेते हैं। तो कामदेव जो हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का रूप लिया प्रद्युम्न। और उसी प्रकार से कार्तिकेय किनके पुत्र हैं? शिवजी के, उन्होंने भी अवतार लिया और वो भी श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आए। कोई जानते हैं उनका नाम? कार्तिकेय भगवान कृष्ण के पुत्र बने, क्या था उनका नाम? सांब। तो ऐसे अलग अलग देवी देवता जो हैं, वो भगवान की लीला में शामिल होने के लिए आए हैं। तो इन सब के बारे में एक के बाद एक विदुर जी प्रश्न कर रहे थे, ये कैसे हैं, वो कैसे हैं। और फिर अंत में फिर से भगवान श्री कृष्ण के विषय पर आए और कृष्ण का गुणगान करने लगे कि हमें तो वही श्री कृष्ण का स्मरण आता है जिन्होंने इतने सुंदर लीलाएं किए हैं और केवल हम सब के ऊपर कृपा बरसाने के लिए अवतार लिए हैं, वो हमारे प्रिय श्री कृष्ण कैसे हैं। तो ऐसे जब प्रश्न करने लगे और पुनः कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के बारे में विषय आया, तो उस समय उद्धव थोड़े समय के लिए स्तब्ध रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। उद्धव के बारे में बताया जाता है कि बचपन से ही वो बड़े शुद्ध भक्त थे। सुखदेव गोस्वामी भागवत में वर्णन करते हैं कि बाल्यावस्था में वो भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे पुतलियां बनाते थे कपड़े के, और उन पुतलियों के साथ में खेलते थे या सेवा करते थे उनकी, उनको भोग बनाकर खिलाना, उनका श्रृंगार करना और ऐसे नाना प्रकार के खेल खेलते थे। तो इसी प्रकार से भक्तों को चाहिए कि उनके बच्चों को इसी प्रकार से बड़ा करें। अगर हम केवल उनको बड़े बड़े आज का जो आधुनिक खिलौने हैं वो देंगे, बड़े बड़े बंदूकें जो ऐसे भयानक आवाज करते हैं, और फिर वीडियो गेम और ये आजकल के जो बटन दबाकर जो नाना प्रकार के ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ये सब रजोगुण और तमोगुण के खिलौने हैं। इससे केवल बच्चों की चेतना नष्ट हो जाती है, कोई भलाई नहीं होता है बच्चों का। क्या पूर्व पहले के जमाने में बच्चे खुश नहीं थे? बच्चे तो ज्यादा खुश थे। आजकल तो लोग बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी कितने तनाव में होते हैं, भारी भारी किताबें लेकर स्कूल में जाते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं। लेकिन पहले के जमाने के बच्चे, उनके पास कहां इतने सारे बड़े बड़े नए तकनीकी और आधुनिक काल के खिलौने थे। उनके पास क्या होता था, पत्थर होता था, कुछ फल लेकर उसे बॉल लेकर गेंद बनाकर खेलते थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में फुटबॉल खेलते थे, तो आंवला के फल को उठाकर उसे फुटबॉल लेकर फुटबॉल खेलते थे। वहां कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं थी बड़े फुटबॉल बनाने के लिए, फिर कोई दुकान चाहिए सब बेचने के लिए, फिर पैसे चाहिए ये सब खरीदने के लिए, फिर उसमें हवा भरने के लिए और मशीन चाहिए, वो भी खरीदनी पड़ती है। ये कोई झंझट नहीं, केवल जंगल में गए, पेड़ चढ़े या नहीं भी चढ़े, पत्थर फेंक दिया, एक अच्छा सा फल मिल गया, उसे फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया और खुश थे बड़े बच्चे वहां उस समय। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि न केवल उद्धव लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे सारे भक्त बचपन से ही ऐसे भगवान की सेवा करते थे, और जो भी उनके खिलौने थे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित थे, जो भी खेल थे वो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित थे। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब उद्धव की माता उन्हें सुबह के नाश्ते के लिए बुलाया करती थी कि अरे उद्धव आओ, नाश्ता का समय हो गया, तो उनको ध्यान ही नहीं लगता और नाश्ते के लिए जाने की इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि वो कृष्ण के पुतलियों के साथ में खेलने में इतने मग्न हो जाते कि वो सोचते कि कृष्ण की सेवा को छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे खाने के लिए भी नहीं जाना है। तो देखिए, ये भूख प्यास ये दोनों इतने शक्तिशाली जो शक्तियां होती हैं उनको पार करना बहुत कठिन होता है, लेकिन इतने बाल्यावस्था में भी उद्धव ने ये भूख के जो वेग को वश में कर लिया था। और हालांकि मां बुला रही है, चलो आ जाओ, प्रसाद रखा है, इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ, लेकिन जाने की कोई रुचि नहीं थी, केवल कृष्ण की सेवा करते रहे। तो वही उद्धव जब आप आज विदुर के ये प्रश्न सुन रहे थे, तो जैसे ही विदुर ने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण के विषय निकाले, तो तुरंत भाव विभोर हो गए उद्धव जी, और भाव विभोर होकर कुछ बोल नहीं पाए और वो एक दूसरे ही ब्रह्मांड में चले गए। कौन से ब्रह्मांड में? भगवान के धाम में चले गए। उनका शरीर यहां पर था लेकिन उनकी चेतना तो गोलोक वृंदावन पहुंच गई, और भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते रहे, उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहे, उनके सुंदर रूप का स्मरण करते रहे। और इसी प्रकार से शरीर यहां पर होते हुए भी चेतना कहीं दूर भगवान के धाम में चली गई थी। बाहरी दृष्टि से लग रहा था कि ये क्या बेहोश हो गए या क्या है, आंख तो खुले हैं, लेकिन फिर भी चेतना भगवान के धाम में। तो थोड़ा समय ऐसा बीत गया और फिर से बाहरी चेतना में आए, फिर से अपनी चेतना को भगवान के धाम से खींचकर वापस भौतिक जगत में ले आए। ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उद्धव को बहुत प्रयत्न करना पड़ा अपनी चेतना को वापस इस भौतिक जगत में लाने के लिए, और ये देखने के लिए कि हमारे सामने कोई व्यक्ति खड़े हैं विदुर जी, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे से बहुत वरिष्ठ हैं, और वो हमें प्रश्न कर रहे हैं, और वो भी महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, और उनके प्रश्नों का उत्तर हमें देना चाहिए। अगर हम केवल ऐसे स्मरण करते करते स्तब्ध अवस्था में रहेंगे तो उनका अपमान होगा। तो इसलिए फिर से वो यहां पर चले आए। तो हमें तो ऐसा प्रयास नहीं करना पड़ता है ना, शायद हमारा प्रयत्न अलग होता है। हम आते हैं मंदिर में गोलोक वृंदावन के वातावरण में कथा कीर्तन चलते समय, लेकिन हमारा मन स्वाभाविक तौर से भौतिक जगत में चले आता है, लेकिन भौतिक जगत से खींच कर हमें उठाना पड़ता है मन को गोलोक वृंदावन में, लेकिन उद्धव की बात बिल्कुल उल्टी थी। अपने भाव को उनको शमन करना पड़ा और फिर अपने आप को नीचे ले आए भौतिक जगत में। इसलिए जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, कभी अगर भाव विभोर हो भी जाते हैं, तो जो भक्ति के लक्षण उनके अंदर प्रकट होते हैं, इन लक्षणों को भक्ति में या सेवा में एक रुकावट बनने नहीं देते हैं। जैसे कि द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के एक सेवक थे जिनका नाम था दारुक। दारुक मतलब उनके सारथी भी थे, उनके रथ को चलाते थे, और दारुक चामर हिला फिला रहे थे, चामर की हवा भगवान कृष्ण को दे रहे थे। और कृष्ण को सामने देखते देखते इतना भाव विभोर हो गया, इतना प्रेम कृष्ण के प्रति उनके हृदय में उभर आया कि सारे भक्ति के लक्षण प्रकट होने लगे, और वो बेहोश होकर गिरने वाले थे। लेकिन फिर दारुक ने सोचा कि अरे मैं ऐसे गिर जाऊंगा, भाव विभोर हो जाऊंगा, तो मेरी सेवा बंद हो जाएगी, तो भगवान कृष्ण को कष्ट होगा, मैं हवा जो उनको दे रहा हूं वो हवा बंद हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को संभाल लिया, रोक लिया, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके स्वार्थ के लिए, उनके भक्ति के आनंद के लिए भगवान की सेवा रुक जाए। इसलिए फिर अपने भक्ति के लक्षणों को दूर भगा दिया उन्होंने और सेवा करते रहे। तो उसी प्रकार से उद्धव ने सोचा कि मेरे लिए अभी उचित यह है कि मेरे सामने जो महाभागवत विदुर जी खड़े हैं उनका मुझे सम्मान करना चाहिए, उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उनका मुझे उत्तर देना चाहिए। तो उद्धव जी फिर भगवान कृष्ण के बारे में बोलने लगे, और जब उन्होंने शुरू किया तो भर 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 जैसे झरने से पानी आता है या जो गोमुख से गंगा बहती है, वैसे शुद्ध भक्त कृष्ण के बारे में बोलने लगते हैं। मानो किसी ऐसे जिसको बंद करके रखा जाए झरने को, और फिर खोल दिया जाए, कैसे फिर से जल बाहर आएगा। तो जब शुद्ध भक्त को ऐसे कोई संधि मिलती है, बस एक कृष्ण शब्द सुनते हैं तो भर 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 कृष्ण कथा निकलती रहती है। तो उद्धव ऐसे उनके मुखारविंद से कृष्ण कथा का अमृत बहने लगा, कृष्ण के बारे में बोलने लगे, सुंदर सुंदर तरह के तरह से उद्धव कृष्ण का स्मरण करने लगे। और श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में ये एक पूरा अध्याय है, उद्धव ने जब कृष्ण का स्मरण किया, और विदुर जी बड़े भक्ति भाव से, बड़े आनंद से इस स्मरण को सुन रहे थे, और उद्धव के लक्षणों को देखकर तुरंत विदुर पहचान गए कि ये उद्धव तो कितने बड़े भक्त हैं, हालांकि मेरे पुत्र के आयु के हैं, फिर भी वास्तव में मुझसे बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो मुझे इनसे सुनना चाहिए। बाद में जाकर विदुर जी ने प्रार्थना की कि मुझे और सुनाइए, और उन्होंने कई प्रकार के प्रश्न किए उद्धव से। लेकिन उद्धव ने अपने मन में सोचा कि मैं तो इनके पुत्र के आयु का हूं, मुझे इनको मार्गदर्शन करना ये मुझे उचित नहीं लगता, और वैसे भी यहां पर थोड़ी दूरी पर मैत्रेय मुनि बैठे हैं जो कि विदुर जी से भी उम्र में बड़े हैं, और वो भी मेरे साथ श्री कृष्ण के संग में थे, सानिध्य में थे, जब श्री कृष्ण ने अपना आखिरी उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रेय मुनि को भी कई अच्छी चीजें बताई। तो उद्धव ने विदुर जी से कहा कि आप निकट में जो मैत्रेय मुनि हैं, आप उनके पास जाइए और उनको गुरु स्वीकार कीजिए। फिर विदुर जी वहां पर चले गए और उद्धव आगे बद्रिकाश्रम चले गए। तो इस छोटी सी कथा से हम क्या समझ सकते हैं कि देखिए, उद्धव जी वैसे ही तो हमेशा 24 घंटे भक्ति भाव से भगवान का स्मरण करते थे, लेकिन जब विदुर जी वहां आए और कृष्ण शब्द का उच्चारण किया, कृष्ण उनके नाम, उनके गुण, उनके भक्तों के बारे में बोलने लगे, तो तुरंत मानो कि जैसे एक दियासलाई या मैचस्टिक लगा दी, एक काड़ी लगा दी, और कृष्ण स्मरण की अग्नि तुरंत आ गई उनके हृदय में और उनके चेतना को खा गई। तो ये हैं भक्तों के लक्षण। मद गुण शुति मात्रेण मई सर्वगुहाश है, जैसे कपिल देव बोलते हैं, केवल भगवान के गुण सुन के उद्धव जी भाव विभोर हो गए। 200 साल पहले का है। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु भाई थे, जिनका नाम था बंशीदास बाबा। बाबा जी थे, बाबा जी मतलब जो वृंदावन में ज्यादा रहते हैं, नवद्वीप में रहते हैं, और ये एक अवधूत की तरह थे जो समाज के नियमों से को ज्यादा पालन नहीं करते थे, इधर उधर घूमते थे। अपने साथ में गौर निताई के चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के विग्रह उनके पास रहते थे, छोटे छोटे मूर्तियां थीं, और एक छोटे से कपड़े के थैली में अपने गले में बांधकर वो ले जाते थे। जैसे हम भक्त जो जप माला एक कपड़े के थैली में लेके गले में टंगाते हैं, उसी प्रकार से वो गौर निताय की मूर्तियां ऐसे कपड़े के थैली में रख के ले जाते। उनके घर में, घर तो क्या, एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें ना कोई दरवाजा था ना अंदर कुछ था, केवल दो चार बर्तन, वो भी आधे टूटे हुए, और वहां गौर निताय की मूर्तियां। और ये बंसीदास बाबा जी इतने शुद्ध भक्त थे कि हमेशा भगवान का स्मरण करते, और जब भी वो कोई ऐसे शब्द सुनते जो कृष्ण या कृष्ण के लीला से थोड़ा भी बहुत संबंधित होता, तुरंत उनको कृष्ण का याद आ जाता है। इधर उधर घूमते समय भौतिक चीजें उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देती थी, और अगर कोई शब्द ऐसे सुनाई भी दिए तो उनको फिर भी कृष्ण का स्मरण आता था। एक बार जब वो भ्रमण कर रहे थे तो कोई दो व्यक्ति कुछ बातचीत कर रहे थे, और ये शब्द, अंग्रेजी शब्द उन्होंने उच्चारण किया, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सुना इन्होंने, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये गोवर्धन है, तो गोवर्धन गोवर्धन करके ऊंचे ऊंचे छलांग मारकर वो कहने लगे, गिरिधारी भगवान की जय। तो ऐसे उच्चारण करके गोवर्धन लीला के भाव में आ गए। उन दो व्यक्ति ने कहा कुछ, इन्होंने समझा कुछ, और कुछ और ही हो गया। लेकिन गोवर्धन की तरह गवर्नमेंट शब्द थोड़ा कुछ मिलता जुलता है, तो उन्होंने गवर्नमेंट नहीं सुना, उन्होंने गोवर्धन सुन लिया। तो थोड़ा भी बहुत एक प्रेरणा उनको मिल गई, और भगवान के बारे में यूं सोचने लगे। तो ये है शुद्ध भक्तों के लक्षण। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि रुक्मिणी देवी जब भीष्मक राजा के राजमहल में रहा करती थी कौंडिन्यपुर में, जो कि अमरावती के पास में है महाराष्ट्र में, तो वहां पे कई ब्राह्मण आया करते थे, कई लोग आकर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया करते थे, और केवल कृष्ण का गुणगान सुनकर रुक्मिणी देवी के हृदय में इतनी भक्ति की भावना जागृत हुई कि उन्होंने ये ठान लिया कि मुझे श्री कृष्ण से ही विवाह करना है, और कृष्ण के अलावा किसी से मैं विवाह नहीं करूंगी। और फिर उन्होंने एक ब्राह्मण दूत को भेजा एक चिट्ठी देकर। फिर वो ब्राह्मण दूत जल्दी से द्वारका चले गए, क्योंकि यहां पर रुक्मी जो कि रुक्मिणी के भाई थे, वो रुक्मिणी का विवाह उनके मित्र शिशुपाल से कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी तो बिल्कुल शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए ब्राह्मण जल्दी से चले गए कृष्ण के पास। कृष्ण ने ये चिट्ठी पढ़ी, तुरंत अपने घोड़ों पर सवार, रथ पर सवार होकर कौंडिन्यपुर आए, रुक्मिणी का अपहरण कर लिया, और रुक्मी इत्यादि और जो सैनिक और राजा एकत्र हुए थे उनको हरा दिया युद्ध में, और द्वारका लौटकर रुक्मिणी देवी से विवाह कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि रुक्मिणी देवी इन्होंने भी केवल भगवान के गुणों का श्रवण करने मात्र से उनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति या प्रेम जागृत हो गया। तो देखिए श्रवण करने की पद्धति ये कितनी शक्तिशाली है। अगर हम भी केवल ऐसे भक्तों के संग में आएंगे और भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करते रहेंगे तो कितना लाभ हमें हो सकता है। इसलिए कुंती महारानी ने भी श्रीमद् भागवत में प्रार्थना की है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। कुंती महारानी कहती हैं कि हे कृष्ण, आपके बारे में अगर कोई श्रवण करता है, श्रृण्वन्ति, या वो कीर्तन करता है, गाता है, गायन्ति, गृणन्ति, या आपके संदेश को, आपके शुद्ध नाम को स्वीकार करता है, गृणन्ति अभीक्ष्णशः, मतलब हमेशा सदैव करते रहता है, ऐसा नहीं कि केवल रविवार को दोपहर को गोकुलानंद मंदिर में करना है, नहीं, बार बार करना है। स्मरन्ति, जो हमेशा आपके बारे में स्मरण करता है। नन्दन्ति, जो उसमें आनंद लेता है और दूसरों के श्रवण कीर्तन और स्मरण में आनंद लेता है। तव इहितम जनाः, ऐसे लोगों के लिए क्या होता है? भव प्रवाह उपरमम्, ये भवलोक, भव सागर, जन्म मृत्यु का चक्र है, ये संसार का जो प्रवाह है वो नष्ट हो जाता है। तो एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम् पदाम्बुजम्, उनको आपके चरण कमलों का दर्शन बहुत ही शीघ्र हो जाता है और फिर इस भवसागर को आसानी से वो पार कर सकते हैं और मृत्यु के बाद आपके धाम को प्राप्त करते हैं। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। तो देखिए, ये श्रवण कीर्तन इत्यादि का मार्ग हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। केवल भक्तों के संग में आकर हम श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करेंगे और दूसरों को भी इस पथ में लाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, आनंद से पूर्ण हो सकता है। और जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें हमें रस मिलेगा और फिर भक्ति रूपी सूर्य का उदय हमारे हृदय में होगा, फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा और मृत्यु के बाद हमें पुनः यहां जन्म नहीं लेना होगा, हमें भगवान के धाम में जाकर उनका निजी सानिध्य और संग प्राप्त होगा। ये हमारे जीवन की अंतिम परिपूर्णता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। क्या आपके कोई प्रश्न हैं या टीका टिप्पणी हैं आज के प्रवचन के बारे में? गए हैं, वापस आ सकते हैं।
आपने उदाहरण दिया, वो एक भौतिक अवस्था में कैसे भगवान को स्मरण कर रहे थे?
वैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनको वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो गुणातीत अवस्था में पहले से ही रहते हैं, इसलिए तीन गुणों का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता उनके ऊपर। तीन गुणों का प्रभाव किन के ऊपर पड़ता है? जो पहले से ही अटके हुए हैं गुणों में और जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं गुणातीत रहते हैं, इसलिए तथाकथित भौतिक अवस्था में रहते हुए भी उनके भक्ति भावना में तनिक भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय में बताते हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो कहते हैं कि जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं बिना रुके हुए, बिना हमारा पतन हुए हुए, तो फिर हम तीन गुणों के परे हो जाते हैं और असली भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो शुद्ध भक्त को कभी यह फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि गौर किशोर दास बाबा जी, वो हमारे गौड़ी वैष्णव परंपरा में एक बहुत महान आचार्य रहे, भौतिक दृष्टि से अशिक्षित लेकिन भक्ति की दृष्टि से शुद्ध भक्त। तो जब उनका यश फैल गया, नाना प्रकार के लोग उनके पास आते थे, महाराज हमें आशीर्वाद दीजिए, और उनमें से कई लोग ढोंगी थे तो तंग आ गए थे गौर किशोरदास बाबा जी ऐसे लोगों से, जो ढोंगी थे, जो वास्तव में भक्ति नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसे जगह में जाऊंगा जहां पर ये नकली लोग मेरे पास नहीं आएंगे, और जो केवल असली भक्त हैं, क्या इतनी गंदी थी कि लोग जल्दी वहां से भाग जाते थे, कोई आता भी नहीं था। तो गौर किशोर दास बाबा जी ने सोचा मैं यहां पर रहूंगा, तो यहां पर केवल सच्चे भक्त आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो भौतिक परिस्थिति का कोई परिणाम नहीं पड़ा उनके भक्ति के ऊपर, वो तो 24 घंटे भगवान का जाप करते रहे। तो इसी प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि ये भी भगवान के शुद्ध भक्त पहले से ही थे, इसलिए अपने वातावरण का फर्क उनको बिल्कुल नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि भक्ति एक आध्यात्मिक चीज है, भौतिक चीजों का परिणाम भक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त बन सकता है। अगर हम सोचेंगे कि बहुत धन होना ये हमारे लिए एक भक्ति में बंधन है, ये सही बात है, लेकिन फिर भी ऐसे भी कितने सारे शुद्ध भक्त हुए हैं जो अमीर थे। और अगर हम ऐसा सोचें कि गरीब होना ये भक्ति के लिए लाभदायक है, ये भी जरूरी नहीं है। ऐसे कितने भिखारी हैं जो बड़े लोभी हैं, भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं उनको। इसका मतलब हमारी जो आर्थिक परिस्थिति है हमारे भक्ति से कोई संबंध नहीं रखता। भक्ति एक निराली ही चीज है, अपनी ही चीज है, वो अपनी ही दुनिया में है भक्ति। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, भगवान का भक्त कोई भी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मिथिला नगर में दो शुद्ध भक्त थे, और खास भगवान श्री कृष्ण द्वारका से निकले मिथिला में उनको जाने के लिए। मिथिला तो आजकल के बिहार प्रांत में आता है, और द्वारका से बिहार भगवान श्री कृष्ण रथ के ऊपर बैठकर गए। कितने दिन लगे होंगे, उस जमाने में कोई एरोप्लेन नहीं था, हवाई जहाज नहीं थी, रेलगाड़ी नहीं थी। इतने दूर वहां गए इन दोनों को मिलने के लिए, इसका मतलब है कि ये दो कितने बड़े भक्त हुए होंगे। तो उन दो भक्तों का नाम था बहुलाश्व और श्रुतदेव। आप में से कोई बता सकते हैं कि बहुलाश्व कौन थे और श्रुतदेव कौन थे? कृष्ण बुक आपने पढ़ा है ना सबने, कृष्ण लीला। बहुलाश्व एक उस प्रांत के राजा थे, मिथिला के राजा थे, और श्रुतदेव वो एक बहुत गरीब ब्राह्मण थे उसी राज्य में। तो देखिए, दोनों भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण और दूसरा बड़ा अमीर राजा, सारे राज्य का प्रमुख व्यक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण जब आए तो सारे ऋषि मुनि सोच रहे थे, अब देखते हैं भगवान किसके पास जाएंगे, श्रुतदेव के पास जाएंगे या बहुलाश्व के पास जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं भगवान किनके पास गए होंगे? आप में से कौन, कितने लोग सोचते हैं कि आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो पहले राजा बहुलाश्व के यहां गए होंगे? हाथ ऊपर कीजिए। बहुलाश्व के पास। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि वो पहले श्रुतदेव के पास गए होंगे? वास्तव में सच्ची तीसरे भी कोई जवाब है क्या? है, अरे ये कैसे हो सकता है, दोनों के पास कैसे जा सकते हैं? कोई जवाब दे सकते हैं? श्रुतदेव की तो छोटी सी कुटिया थी शहर के किसी कोने में, और बहुलाश्व का इतना बड़ा महल था, तो दोनों जगह एक साथ कैसे जा सकते थे भगवान श्री कृष्ण? उन्होंने अपने आप को विस्तारित कर दिया, बस उनके लिए आसान है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को दो रूपों में विस्तारित किया, और थोड़े ऋषि मुनिगण उनके साथ बहुलाश्व के यहां गए, और फिर थोड़े श्रुतदेव के यहां गए। दोनों श्रुतदेव और बहुलाश्व को लगा कि कृष्ण हमारे ही घर में आए हैं। दोनों बहुत आनंद से, आनंद के सागर में झूम रहे थे। तो भगवान के लिए ऐसा करना कठिन नहीं है, कहने का मतलब यह है कि श्रुतदेव जैसे राजा इतने ऐश्वर्यशाली परिस्थिति में रहते थे, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के इतने शुद्ध भक्त कि खास उनका दर्शन करने के लिए भगवान द्वारका से चले आए। तो उसी प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि भी ऐसे ऐश्वर्यशाली भक्त थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो और कोई प्रश्न किसी का?
पंचतत्व में गदाधर पंडित है, वही गदाधर पंडित?
हाँ, वही गदाधर पंडित। लेकिन यह भगवान की एक लीला है अपने भक्तों के साथ, केवल दूसरे भक्तों का गौरव कराने के लिए महाप्रभु ऐसी लीलाएं करते थे। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो अभी हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कृपया इसमें बहुत उत्साह से भाग लीजिएगा। उसके बाद में प्रसाद होगा और फिर इष्ट गोष्ठी। एक प्रश्न है आपका, एक आखिरी प्रश्न जल्दी से कर लीजिए, वहीं से कर लीजिए, हम दोहराएं।
अगले हफ्ते हमको फिर इतना सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनवाएंगे प्रभु जी?
आप रोज सुन सकते हैं अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो, रोज आपको कृष्ण लीला मिलेगी। अगले हफ्ते है क्यों? अगर आपने ये गीता भागवत ये प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथों को लिखे हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे तो सुबह दोपहर शाम रात आप लीला